नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आह्वान किया। तेलंगाना में 119 सीट वाली विधानसभा के लिए बृहस्पतिवार शाम 7 बजे तक मतदान होगा। वहीं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान शुरू होने से पहले मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं तेलंगाना के अपने भाई बहनों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने युवा और पहली बार मतदान कर रहे मतदाताओं से भी बड़ी संख्या में इस पर्व में भाग लेने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सीरिया के गोलन हाइट्स से इसराइल अपना कब्जा हटा ले। खास बात है कि भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं 8 देशों ने इसके विरोध में वोट किया, 62 देश वोटिंग से दूर रहे। बता दें कि ये वो क्षेत्र है जिसे यहूदी राष्ट्र इसराइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में सीरिया से कब्जा लिया था। गोलन हाइट्स को लेकर आए प्रस्ताव पर कुल 91 देशों ने समर्थन किया है। इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, लेबनान, इराक, ईरान और इंडोनेशिया भी हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, इसराइल, कनाडा और मार्शल आइलैंड ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। इस प्रस्ताव पर यूक्रेन, जापान, केन्या, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसे 62 देशों ने वोटिंग से दूरी बना दी। उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों में शामिल बिहार निवासी एक श्रमिक ने बुधवार को शिकायत की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के श्रमिकों के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने अधिकारियों को मौके पर नहीं भेजा और न ही राज्य में उनके रिश्तेदारों से ही संपर्क किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में श्रमिकों से मिलने पहुंचे तब श्रमिक ने यह शिकायत की। श्रमिक ने धामी से कहा, सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों के फंसे श्रमिकों की कुशलता जानने के लिए अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न तो किसी को भेजा और न ही हमारे घर पर हमारे परिजनों से सहानुभूति जताने के लिए संपर्क ही किया। मुझे नहीं पता कि हमने क्या गलती की थी। अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर 22 जनवरी उत्तर प्रदेश सरकार उत्सव के रूप में मनाएगी और मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक राज्य के सभी प्रतिष्ठित मंदिर एवं मठों में अखंड रामायण, रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन होगा। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यहां ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से स्थानीय कलाकारों द्वारा मकर संक्रांति 14 जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, 22 जनवरी तक लगातार रामायण एवं रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का संस्कृति विभाग इसके लिए आवश्यक तैयारी कर रहा है। उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में बढ़ा इजाफा देखने को मिल गया है। एक झटके में अडानी की संपत्ति में 6.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिल गई है। वर्तमान में उनकी संपत्ति 66.7 तक पहुंच गई है और वो अमीरों की लिस्ट में 19वें स्थान पर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि अडानी के शेयरों में जो तेजी आई है उसी वजह से उनकी संपत्ति पर भी इतना सीधा असर देखने को मिला है। वैसे अडानी ने एक तगड़ी वापसी जरूर की है, लेकिन उद्योगपति मुकेश अंबानी अभी भी उनसे आगे ही चल रहे हैं। टॉप 20 की लिस्ट में अंबानी अभी 13वें स्थान पर हैं। आंकड़ों में बात करें तो अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनका ओवरऑल मार्केट कैप 1.04 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 11.29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि ऐसा उछाल पिछले साल 11 अप्रैल के बाद देखने को मिला है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के आने के बाद से ही अडानी शेयर गिरने लगे थे। खुद गौतम अडानी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मणिपुर में सबसे बड़ा शांति समझौता संपन्न हो गया है। यूएनएलएफ ने अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में आने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में इस समझौते को सहमति दे दी गई है और गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर जानकारी भी दी है। उन्होंने इस पूरे समझौते को एक नया अध्याय बताया है, राज्य की स्थिति को देखते हुए ऐतिहासिक बता दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज जो शांति समझौता हुआ है उससे 6 दशकों से चला आ रहा सशस्त्र आंदोलन समाप्त हो गया। पीएम मोदी का जो विजन है पूर्वोत्तर के युवाओं को अच्छा और सुरक्षित भविष्य दिया जाए, ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि यूएनएलएफ को मेनस्ट्रीम के साथ जुड़ने पर बधाई, उन्हें शांति के रास्ते पर चलने के लिए शुभकामनाएं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।